Hare Krishna. Nilachala Nivasaya Nityaya Paramatmane Balabhadra Subhadravyam Jagatnathaya Te Namaha.
इसको बंद कर दो।
तो आप सबका स्वागत है इस जगन्नाथ उत्सव में। तो आज आपको आपका सौभाग्य था प्रबोधानंद महाराज से यहां जगन्नाथ की जो कथा है श्रवण करने का, परंतु महाराज न आने के कारण मुझे ये सेवा करने का अवसर प्राप्त हुआ है। तो ये जगन्नाथ की विशेष अनुकंपा है। तो भगवान जगन्नाथ, उनके नाम से ही ये प्रतिपादित होता है कि वो किसी एक समाज, किसी एक देश, किसी एक जाति के नाथ नहीं है। वो क्या है? सारे जगत के नाथ है। जब श्रील प्रभुपाद जगन्नाथपुरी गए थे अपने विदेशी शिष्यों को लेकर, तो उस समय जो जगन्नाथ मंदिर के पंडागण है, मैं पुजारी से, वो प्रभुपाद के पास आए और उन्होंने कहा, स्वामी जी आपने तो जगन्नाथ की महिमा को पूरे विश्व में प्रचारित कर दिया है, आप आइए जगन्नाथ का दर्शन करने के लिए मंदिर में। तो श्रील प्रभुपाद चाहते थे कि मैं अकेले जगन्नाथ का दर्शन करने ना जाऊं, मैं अपने विदेशी शिष्यों के साथ जगन्नाथ का दर्शन करने के लिए जाऊं। लेकिन हाँ, वहां जगन्नाथपुरी में केवल हिंदुओं को प्रवेश है जगन्नाथ का दर्शन करने के लिए। तो उन्होंने कहा कि केवल हम आपको प्रवेश दे सकते हैं, आपके जो विदेशी शिष्यगण हैं उनको प्रवेश वर्जित है। तो प्रभुपाद ने कहा, ये जो जगन्नाथ है ये कोई पंडागण नहीं है। हाँ, क्योंकि जो पुजारी है वहां उड़ीसा में उनको पंडा कहते हैं, पुजारियों को नॉर्थ में पंडित जी कहते हैं। तो अलग अलग एरिया में अलग अलग कल्चर है जो भगवान की सेवकों का पुकारने का। तो प्रभुपाद ने कहा कि ये कोई पंडा नाथ नहीं है, ये तो जगत के नाथ है। और मैं भी, यदि मेरे भक्तों को प्रवेश नहीं है तो मैं भी जगन्नाथ का दर्शन करने के लिए नहीं जाऊंगा। तो ऐसे भगवान जगन्नाथ विशेष विशेष अवतार है, अवतार नहीं है, वो परम पुरुष भगवान है। क्योंकि हर युग का धाम है, हर युग का मंत्र है और हर युग के विग्रह है जिनकी उपासना करना एक व्यक्ति का परम धर्म है। तो सत्ययुग के धाम कौन सा है? बद्रीनाथ। और त्रेता का धाम रामेश्वरम है और द्वापर में द्वारका है। और कलयुग के लिए क्या है? जगन्नाथपुरी। जगन्नाथपुरी धाम के। तो इस प्रकार से, उसी प्रकार से, जिस प्रकार से हर युग के लिए मंत्र अलग है, हर युग के लिए धाम अलग है, उसी प्रकार से हर युग के उपासना विग्रह अलग है। तो इस युवा के लिए किनकी आराधना करनी चाहिए? भगवान श्री जगन्नाथ देव। और अकेले जगन्नाथ की नहीं, जब हम अकेले जगन्नाथ की पूजा करते हैं तो उन जगन्नाथ को कहा जाता है पतित पावन जगन्नाथ, या फिर दधि पावन कहते हैं उसे। हाँ, क्योंकि जब भगवान जगन्नाथ अपने बहन सुभद्रा और बलराम से अलग हो जाते तो अत्यधिक दयालु हो जाते हैं, उनकी दया की कोई सीमा नहीं है। तो ऐसे भगवान जगन्नाथ कलयुग के परम विग्रह हैं और कलयुग का जो धाम है जगन्नाथपुरी, जहां अवतरित होते हैं और श्रील प्रभुपाद की अनुकंपा से वो जगन्नाथ अभी कोई ओडिशा नाथ, उड़िया नाथ, पंडा नाथ नहीं है। अभी वास्तव में उनका नाम सार्थक हो गया है उनके भक्त के माध्यम से और उन्हें पुकारा जाता है जगन्नाथ। तो ऐसे जगन्नाथ जी श्रील प्रभुपाद के प्रिय विग्रह थे। श्रील प्रभुपाद जब छोटे से थे तो कलकत्ता में अपने पिताजी से, जिस दिन रथ यात्रा होती थी जगन्नाथपुरी में, उस दिन पिताजी से कहते थे मुझे भी रथ चाहिए वैसे ही। तो उनके पिताजी तो इतना धन नहीं था, उन्होंने कहा चलो तुम्हारे लिए छोटा सा रथ बना देता हूँ। उन्होंने कहा नहीं, अभय, प्रभुपाद का जो बचपन का नाम अभय था, उन्होंने कहा मेरे पास वैसा ही रथ होना चाहिए जैसा रथ कहाँ है जगन्नाथपुरे में, वैसी ही उसी की प्रतिकृति होनी चाहिए। हाँ, तो उनके पिताजी अरेंज करते हैं और प्रभुपाद अपने बचपन में कंटिन्यूअसली रथ यात्रा का आयोजन करते हैं। और ऐसा वर्णन आता है जब थोड़े से बड़े हो गए तो कलकत्ता रेलवे स्टेशन जाते थे और जाकर चेक करते थे कि जगन्नाथपुरी जाने वाली ट्रेन कब है और वृंदावन जाने वाली ट्रेन कब है, तो हमेशा देखा करते थे। तो ऐसा विशेष अनुराग श्रील प्रभुपाद का भगवान जगन्नाथ के प्रति था और उन्होंने इस आंदोलन में सबसे पहले किसी विग्रह की स्थापना की है, तो वो कौन से विग्रह है, जगन्नाथ जी है। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि इस आंदोलन से भगवान जगन्नाथ का विशेष विशेष संपर्क है या विशेष विशेष कृपा है। तो ऐसे भगवान जगन्नाथ के बारे में हम अभी सुनेंगे कुछ समय के लिए। अरे परम सौभाग्य है कि ये 3 दिन का यज्ञ है। कितने दिन का? 3 दिन का महायज्ञ है जिसमें उपस्थिति परम आवश्यक है, क्योंकि ये जो यज्ञ है इसमें हवन कुंड क्या है, हमारे कान है। क्या है हवन कुंड? कान है। और इसमें जो आहुति डाली जाएगी वो आहुति है भगवान जगन्नाथ की, जो कथा आदि है उसकी ये आहुति है। और जब ऐसे कृष्ण कथा को हम सुनेंगे तो उससे क्या होगा, भगवान कृष्ण के प्रति हमारा जो अनुराग है, लगाव है, प्रेम की भावना है, वो विकसित होगी। तो इस प्रकार से भगवान जगन्नाथ बने ही कैसे बने, वो भगवान सुनकर बने हैं। जगन्नाथ कौन है? साक्षात कृष्ण है। लेकिन कृष्ण ही जब अपने बारे में सुनते हैं तो उनके स्वरूप में, उनके विग्रह में परिवर्तन आ जाता है और वही कृष्णा जगन्नाथ के रूप में अपना ये जो स्वरूप है वो प्रकट करते हैं। तो हम उस लीला को आज संक्षेप में सुनेंगे और साथ ही साथ भगवान जगन्नाथ की, जगन्नाथपुरी की कई सारी जो लीलाएं हैं समय के साथ साथ उनको भी थोड़ा श्रवण करने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से भगवान जगन्नाथ अपने भक्तों से प्रेम रखते हैं और अपने भक्तों से प्रेम का आदान प्रदान करते हैं। इसलिए भगवान जगन्नाथ को भक्त वत्सल भगवान कहते हैं। अलग अलग विग्रह को अलग अलग नामों से पुकारा जाता है, लेकिन ये जो भक्त वत्सल जो शब्द है, ये टाइटल है, विशेष रूप से भगवान जगन्नाथ जी के लिए लागू होता है। ऐसे विशेष देव है जगन्नाथ देव। तो शास्त्रों में विशेष रूप से सनातन गोस्वामी भगवान जगन्नाथ का वर्णन करते हैं अलग अलग ग्रंथों में, और जिसमें वर्णन आता है कि भगवान कृष्ण, कृष्णा इस संसार में प्रकट होते हैं मथुरा में। तो अभी हम उस लीला का वर्णन सुनेंगे कि कैसे भगवान जगन्नाथ का सर्वप्रथम प्राकट्य कब, कहां और कैसे हुआ, ये जो स्वरूप है उन्हें कैसे प्राप्त हुआ। मैंने जब सबसे पहले भगवान जगन्नाथ के विग्रह को देखा था, मुझे लगा ये इस्कॉन के लोग पागल है, ये कैसे भगवान है, ऐसे एक एक डॉग है और जिसके ऐसी बड़ी बड़ी आंखें हैं, हाथ भी नहीं है, ऐसे कैसे भगवान है ये कौन। लेकिन कभी उनके बारे में सुनने का मौका नहीं मिला। लेकिन जैसे जैसे भक्तों का संग बढ़ा और भक्तों के सहचार्य में भगवान के बारे में सुनने का मौका मिला, तो समझ में आया कि वास्तव में भगवान जगन्नाथ क्या है, साक्षात कृष्ण है और सारे अवतारों के मूल स्रोत है। तो भगवान कृष्ण इस संसार में प्रकट होते हैं मथुरा में, और मथुरा में प्रकट होकर वो वास्तव में वहां से चले जाते हैं गोकुल में, महावन में वसुदेव उनको लेकर चले जाते हैं और वहां कई प्रकार की लीलाएं भगवान कृष्ण करते हैं। और विशेष रूप से भगवान अपने भक्तों से 4 प्रकार के संबंधों में आदान प्रदान करते हैं, सख्य, वात्सल्य, माधुर्य और दास, और कभी कभी शांत भाव। तो इस प्रकार से भगवान जब वृंदावन में निवास कर रहे थे और अपने भक्तों से आदान प्रदान कर रहे थे, तो ऐसे भगवान आनंदित हो जाते हैं जब वो देखते हैं कि मेरे भक्तों का जो प्रेम है मुझसे बहुत अधिक है, जिसकी तुलना इस संसार में किसी प्रेम से नहीं की जा सकती। मूलतः भगवान कृष्ण प्रकट कहां हुए थे? वृंदावन में हुए थे, यशोदा माता के पुत्र के रूप में। तो ऐसे कृष्ण जब वृंदावन में प्रकट हुए और यशोदा माता के पुत्र कहलाए और वहां उन्होंने कई सारी लीलाएं की, उन सारे बाल लीलाओं का हम सुनते हैं कई बार, तो भगवान ने कई सारी बाल लीलाएं की यशोदा माता के साथ, असुरों का वध किया, गोपियों के साथ रास क्रीड़ा की, केशी घाट में, बंशी भट में, अलग अलग वनों में भगवान कृष्ण ने विचरण किया। लेकिन जब भगवान कृष्ण 11 साल के हुए तो भगवान को वृंदावन को छोड़ना पड़ा, लेकिन शास्त्र कहते हैं कृष्ण कभी भी वृंदावन नहीं त्यागते। वृंदावन परित्यजम एक पादम न गच्छति, वृंदावन को छोड़कर कृष्ण एक कदम बाहर नहीं जाते। तो कोई कह सकता है कि कृष्ण फिर कैसे मथुरा चले गए? तो भगवान का वो वासुदेव विस्तार था, मूल जो ब्रजेंद्र नंदन यशोदा नंदन कृष्ण है वो वृंदावन में अप्रकट रूप में रहते हैं और सारे भक्तों को देखते रहते हैं कि मैं जब इनसे दूर जाता हूं तो इनका जो प्रीति है मेरे प्रति कितनी अधिक बढ़ रही है, इसको भगवान देखते हैं, चेक करते हैं। और फिर भगवान देखते हैं कि वास्तव में मैं ही इनका प्राण हूं, मेरे बिना वृंदावन वासी एक सेकंड के लिए भी जीवित नहीं रह पाते। लेकिन कोई कह सकते कि कैसे जीवित रहे? तो शास्त्र कहते हैं कि भगवान जब वृंदावन से बाहर निकले अक्रूर के साथ, तो सारे ब्रजवासी गोपियों के साथ एकत्रित होकर जोर जोर से रोदन कर रहे थे। तो भगवान ने जाते जाते केवल एक शब्द बोल के गए कृष्ण वृंदावन से बाहर, आयास हो। भगवान कहते हैं कि मैं वापस आऊंगा। तो यही एक शब्द वृंदावन वासियों के प्राण को धारण करने के लिए काफी था। वृंदावन वासी इसलिए जीवित हैं कि उन्होंने सोचा अरे कृष्ण यदि आएंगे और हमें वृंदावन में नहीं देखेंगे तो वो दुखी हो जाएंगे। इसलिए वृंदावन वासियों का जो प्रेम है वो सर्वोत्कृष्ट है। क्यों? क्योंकि उनका जो जीवन है केवल कृष्ण को आनंद प्रदान करने के लिए है। तो ऐसे कृष्ण जब मथुरा में आते हैं और मथुरा में आकर भी जब वहां कंस वसुदेव और देवकी की हत्या करने वाला था, तो अक्रूर कहते हैं कि अरे कृष्णा ये जो कंस है वो वसुदेव देवकी की हत्या करने वाले हैं, जो आपके माता पिता हैं। तो कृष्ण कहते हैं मेरे माता पिता तो नंदा और यशोदा है। हम कृष्णा भूल गए कि मेरे माता पिता कौन भी और भी है, कौन है? वसुदेव और देवकी। लेकिन मूलतः कृष्ण के माता पिता नंद महाराज और यशोदा हैं, जिनसे भगवान कृष्ण को सर्वाधिक प्रेम या सर्वाधिक लगाव था। तो ऐसे भगवान फिर मथुरा को भी छोड़ते हैं कंस का वध करने के बाद। जरासंध आक्रमण करता है, जरासंध को 17 बार पराजित करने के बाद भगवान कृष्ण द्वारका जाते हैं, द्वारका में निवास करते हैं। और फिर भगवान 16,108 रानियों से विवाह करके द्वारकाधीश के रूप में वहां निवास करते हैं। तो ये भगवान का संक्षिप्त चित्रण है। तो यहां से फिर भगवान के कृष्ण के बुरे दिन शुरू हो जाते हैं। कोई कह सकता है अरे कृष्णा अपने जो जिनसे कृष्ण को सर्वाधिक प्रीति थे वृंदावन वासियों से भगवान दूर चले गए, तो भगवान को अभी इस संसार की कोई भी चीज सुख नहीं दे पाई। तो भगवान द्वारका में रहते हुए भी रोज रोया करते थे। एक भी दिन ऐसा नहीं था, शास्त्र कहते हैं कि कृष्ण द्वारका में उन्होंने अपने आंसू न बहाए हो। तो एक बार नारद जी जाते हैं भ्रमण करते करते द्वारका जाकर नारद जी सोचते हैं कि संसार से सबसे भाग्यवान व्यक्ति कौन है। नारद ने अलग अलग लोगों का वर्णन करते हुए नारद जाते द्वारका और वहां जाकर नारद कहते हैं कि सबसे अधिक भाग्यशाली व्यक्ति तो ये रानिया है। कौन है? ये रानिया है जो भगवान की इतनी अधिक सेवाओं में नियुक्त है, व्यस्त है। नारद 16,108 रानियों के पास जाते हैं, सत्यभामा, नग्नजिति, रुक्मिणी, मित्रविंद्या आदि, उनके पास जाकर नारद उनको दंडवत प्रणाम करते हैं। नारद कहते हैं कि अहो भाग्यम, आपका कितना बड़ा भाग्य है कि आप कृष्ण की सहचरी बनी हो, कृष्ण की पत्नियां हो, जो निरंतर कृष्ण को देखती है, कृष्ण की सेवा में नियुक्त है। नारद कहते हैं कि आप सब मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। वो रानिया कहते हैं, नारद हाँ आज आप कुछ ठीक नहीं लग रहे हो, जैसे कोई व्यक्ति ऐसा करे आपके पास आकर, हाँ कोई आप कहोगे ना पीके तो नहीं आया, तो वैसे ही रानिया कहती है, नारद आपको क्या हो गया, कैसे आप हमें प्रणाम आदि कर रहे हो। नारद कहते हैं, नारद को रानिया कहती है कि आपको गलत फहमी है कि कृष्ण सबसे अधिक हमसे प्रीति रखते हैं या हमारे सेवाओं को स्वीकार करते हैं। रुक्मिणी ने अपना रोना शुरू कर दिया। हाँ, रुक्मिणी और सत्यभामा ने, स्त्रियों के पास जाओगे तो उनके पास कुछ ना कुछ क्या होता है, रोने के लिए, कहने के लिए कई बातें होती हैं। तो सत्यभामा और रुक्मिणी नारद को कहने लगी कि हे नारद, जब से आपने विवाह किया है कृष्ण से, तब से हमारे दुख के दिन शुरू हो गए हैं। हाँ, नारद कहते, अरे सारा संसार सुख की खोज में कृष्ण की शरण ग्रहण कर रहा है और आप कृष्ण को प्राप्त करने के बाद भी कहती हो कि हमारे कौन से दिन शुरू हो गए हैं, दुख के दिन। हाँ, तो नारद कहते बताओ। तो रुक्मिणी देवी जो सबकी मुखिया है, वो कहती है कि वास्तव में जब से हमने विवाह किया है और हमने कभी भी अपने दासियों को कृष्ण की सेवा में नहीं लगाया। लक्ष्मी सहस्रम शत संभ्रम सेव्यमानम गोविंदमादि पुरुषम तवहं भजामि। ब्रह्मा कहते हैं कि हजारों हजारों लक्ष्मियां द्वारका में कृष्ण की सेवा करती हैं। कौन से गुण में करती हैं? संभ्रमानम, बिल्कुल आदर ऐश्वर्य आदि के साथ, और बहुत सावधान होती है कृष्ण की सेवा करने में, कोई भी गलती नहीं करती है। तो नारद को वो कहते हैं कि हम सारी हजारों हजारों लक्ष्मियां कृष्ण की सेवा में नियुक्त हैं और हमारे पास कितनी सारी हम कलाओं में निपुण हैं, दक्ष हैं, और हमारे जैसी सुंदर ललनाएं इस संसार में कोई और नहीं है, लेकिन हमारा दुर्भाग्य है क्या है कि फिर भी कृष्ण हमारे अलावा किसी और का नाम ले लेकर रोते हैं, किसी और की याद में द्वारका में आंसू बहाते हैं। तो नारद पूछते हैं बताओ बताओ। तो रुक्मिणी बोलती है कि हे नारद, जब रात्रि में हम सोते हैं मेरे रूम में, क्योंकि कृष्णा 16,108 प्राणियों के महल में इतने ही रूपों में सदैव उपस्थित रहा करते थे, तो जब रुक्मिणी ने कहा कि मेरे महल में जब भगवान लेटे होते हैं, विश्राम कर रहे होते हैं, तो अचानक स्वप्न में मेरी जो वेणी है, वेणी कहते थे बालों, वेणी खींच लेते हैं और खींचते हुए कहते हैं कि ओ राधा, ओ ललिता, ओ विशाखा, आप कहाँ हो। फिर रुक्मिणी सोचते कि ये कौन से नामों का जप हो रहा है, मेरा नाम लेना चाहिए, सत्यभामा का नाम लेना चाहिए, मित्रविंद्या का नाम लेना चाहिए, नग्नजिति का नाम लेना चाहिए, लेकिन ये सदैव सो रहे हैं स्वप्न में, मेरी वेणी खींचते हुए कहते ओ राधिका, ओ ललिता, ओ विशाखा, ओ चंपकलता। इस प्रकार से रुक्मिणी कहती है कि ये समझ में नहीं आता मुझे, और इतना ही नहीं बल्कि जोर जोर से चिल्लाते हुए कहते हैं कि हे माता यशोदा, मुझे ब्रेड और बटर चाहिए और मैं मुझे अपने गोद में बिठाकर आपके स्तनों का पान कराओ और आपने हाथों से मुझे ब्रेड और बटर खिलाओ। तो कभी कभी वो कहती है, रुक्मिणी कहती है इतना ही नहीं, ये तो माता का हो गया, कहते फिर सखाओं का नाम लेते हुए चिल्लाते हैं, कहते कि हे श्रीदाम, हे सुदाम, हे मधुमंगल, जल्दी जल्दी आओ, मुझे रहा नहीं जा रहा है, गवे चराने ले जाना है, टाइम बहुत हो गया है। और फिर भगवान शोक इस प्रकार से रुक्मिणी कहती है कि एक दिन का ये रोना नहीं है, प्रतिदिन की ये कहानी है। हाँ, इसको कहते हैं ब्रज प्रेम कहानी, ब्रज की ये प्रेम कहानी है। तो ऐसे जब अपनी शिकायत नारद से कर रहे थे रुक्मिणी देवी, और कहते कि ठीक है ये ब्रजवासियों का नाम ले रहे हैं, लेकिन इतना ही नहीं वो गौओं को भी पुकारते हैं, हे शामली, हे धवली, हे पीताम्बरी, ऐसे अलग अलग नामों को लेकर कृष्ण द्वारका में रोज रोदन करते थे और पूरी रात रोते रहते थे। उनके आंसुओं से सारा जो बेड है, उनकी तकिया है, वो रोज गीली हो जाते थे और हमें रोज नया लाकर रखना पड़ता था वहां। तो इस प्रकार से रुक्मिणी अपनी शिकायत कर रहे थे और वो कह रहे थे कि वास्तव में हम दुखी हैं कि हमसे कोई प्रेम नहीं है, हम उनकी सेविकाएं हैं, दासियां हैं, पत्नियां हैं, लेकिन फिर भी वो क्या करते हैं, सदैव वृंदावन वासियों का नाम ले लेकर दिन रात रोते रहते हैं। तो जब ऐसा रुक्मिणी ने बोला, फिर जब चर्चा हो रही थी रुक्मिणी के महल में, तो उस समय कृष्ण कहाँ थे, अपने सुधर्मा भवन में थे। आपको याद होगा जब भगवान ने द्वारका नगरी की स्थापना की थी तो अलग अलग देवताओं ने भगवान को अलग अलग चीजें भेंट के रूप में प्रदान की थी। तो देवताओं ने सुधर्मा सभागृह दिया था जो स्वर्ग लोक का था। ऐसा सभागृह था कि वो फुल्ली एयर कंडीशन था, ऐसे कहते हैं, और मन में जो विचार करो उसी के अनुसार वो छोटा हो जाता था, कम लोग हैं तो छोटा हो जाता था, बहुत लोग हैं तो बड़ा हो जाता था। तो इस प्रकार से इसकी कई सारी विशेषताएं थी। तो भगवान दिन में ये अपना ऑफिस कार्य करने के लिए जाते थे। यदि आप द्वारका गए हो तो बेट द्वारका में कथा हो रही थी और सुधर्मा सभा जहाँ भगवान का भी कृष्णा टेम्पल है गोमती द्वारका में, वहां वो सुधर्मा सभा कर रहा था। तो भगवान बलराम के साथ, उद्धव के साथ, उग्रसेन के साथ वहां चर्चा में व्यस्त थे और भगवान को तुरंत क्लिक हो गया, कोई तो मेरे बारे में चर्चा कर रहा है। इसलिए कृष्ण को सबसे प्रिय चीज कोई है तो वो कौन सी चीज है, कथयन्तश्च माम नित्यं तुष्यन्तिश्च रमन्तिश्च। भगवान कहते हैं कि मुझे सर्वाधिक प्रिय लगता है जब मेरे भक्त एकत्रित आते हैं और जब एक दूसरे से मिलते हैं और मुझे केंद्र बिंदु बनाकर मेरी चर्चाएं करते हैं, जब वो चर्चा करते हैं वो सबसे प्रिय मुझे लगता है। इसलिए नारद ने एक बार कृष्ण को पूछा था कि मैं इतने स्थानों में भ्रमण करता हूं तो लोग मुझे पूछते हैं कृष्ण का एड्रेस क्या है, तो कृष्ण कहते मैं बताता हूं मेरा परमानेंट एड्रेस, यत्र गायन्ति मद् भक्ता तत्र तिष्ठामि नारद, नाम तिष्ठामि वैकुंठे योगिनां हृदयेषु वा। मैं वैकुंठ में निवास नहीं करता, योगियों के हृदय में निवास नहीं करता, लेकिन जहां मेरे प्रेमी भक्त मेरी चर्चा करते हैं वहां मैं सब चीजों को छोड़ छाड़ कर वहां आकर बैठ जाता हूं, वहां आकर निवास करता हूं। किस प्रकार से भगवान उस सुधर्मा सभा में थे तो भगवान तुरंत, भगवान को लगा कि कोई मेरी चर्चा कर रहा है, तो भगवान कृष्ण वहां से निकलने के बारे में सोचा। तो रुक्मिणी देवी उस समय जाती है सारे रानियों को लेकर, न जब ये रुक्मिणी के महल में सब चर्चाएं हो रही थी तो उस समय उनके महल में, रुक्मिणी के महल में बलराम की जो माता है रोहिणी देवी का आगमन होता है, और रोहिणी देवी जैसे ही आती है तो सारी रानियां उनको प्रणाम करती हैं, और प्रणाम करते हुए रुक्मिणी एक प्रश्न पूछती हैं, और वो प्रश्न काफी था भगवान कृष्ण को जगन्नाथ बनने के लिए। रुक्मिणी देवी उनको प्रश्न पूछती है कि हे रोहिणी माता, आप तो वृंदावन में 11 साल आपने निवास किया है, जब तक कृष्ण ने जन्म लिया और वो मथुरा चले गए तब तक पूरा समय आप ब्रज में थे, और हमें पता नहीं चलता कि भगवान द्वारका में रहते हुए भी ब्रजवासियों का इतना स्मरण क्यों करते हैं, और क्या ऐसी चीज है वृंदावन वासियों के पास जिसके कारण कृष्ण का मन द्वारका में नहीं लगता। तो रुक्मिणी देवी हाँ जब ये बोलती हैं तो रोहिणी माता उनके प्रश्न का उत्तर देने के लिए तैयार हो जाती हैं। और ये सारे रानियां रुक्मिणी के महल में रोहिणी माता को एक सिंहासन पर बिठाती है और सारी रानियां फिर उनसे सुनने के लिए तैयार हो जाती हैं वृंदावन की जो चर्चा है। तो रोहिणी माता उनको बताने लगती है कि देखो भगवान जो कृष्ण है या कृष्ण जब वृंदावन में निवास कर रहे थे तो उस समय उनका जो संबंध है सारे ब्रजवासियों से बहुत अधिक गहरा था और आप जो पत्नियां हो आपका संबंध उनके साथ एक पति का है और फिर भी आपका जो प्रेम है भगवान के प्रति पूर्ण रूपेण नहीं है। तो रुक्मिणी ने पूछा क्यों पूर्ण रूपेण नहीं है, बल्कि रुक्मिणी कहती है कि वृंदावन वासियों के पास है ही क्या, उनके पास इतने अच्छे आभूषण नहीं है, ब्रज के लोग इतने सुंदर नहीं है, उनके पास बहुत अधिक सुविधाएं नहीं है, वो सब गांव में रहते हैं, फिर भी कृष्णा उनकी ओर ही आकर्षित क्यों है। तो रोहिणी माता बताती हैं क्योंकि कृष्णा आकर्षित इसलिए है क्योंकि वृंदावन वासियों का जो प्रेम है वो कृष्ण के प्रति प्रति 100% है और आप जो रानियां हो आप सबका हृदय कृष्ण के लिए नहीं है पूर्ण रूपेण, क्योंकि इस संसार में भी देखा जाता है जब नया नया विवाह होता है तो पति पत्नी का बहुत अधिक एक दूसरे से लगाव प्रेम सेवा की भावना होती है, जैसे जैसे दिन बीतते हैं तो क्या हो जाता है कम हो जाता है, उसी में भी कोई बच्चा जन्म ले घर में तो दोनों का प्रेम एक दूसरे के लिए आधा होकर आधा बच्चे के लिए हो जाता है, आधा पत्नी के लिए 50% बच्चे के लिए 50%। हाँ तो प्रेम की जो भावना है वो कम हो जाती है। तो उसी प्रकार से रोहिणी कहती है कि हे द्वारका की रानियों आप हर एक रानी को 10 पुत्र थे और एक कन्या थी, 11 थे, कितने थे 11, और आपका एक ही हृदय है, आपने हृदय के पहले से 11 टुकड़े कर दिए हैं और 12वां भाग किसके लिए रखा है कृष्ण के लिए। लेकिन वृंदावन वासियों का ऐसा नहीं था, वृंदावन वासियों का अपना परिवार संबंधी सब कुछ होने के बावजूद भी उनका हृदय किसी के लिए नहीं था, किसके लिए था कृष्ण के लिए था, कृष्ण के अलावा उनका हृदय अपने पुत्र परिजन किसी और के लिए नहीं था। और यही एक में कारण था कि जिसके कारण कृष्ण क्या करते उनसे पूर्ण रूपेण आकृष्ट हो जाते हैं और यही वास्तव में भगवान भक्ति की क्या है परमोच्च सीमा है, यही है शुद्ध भक्त का लक्षण। शुद्ध भक्त का जो हृदय है वो इस संसार में कृष्ण के अलावा किसी और के लिए नहीं है, इसलिए आचार्य जन कहते हैं तुम्हारा हृदय सदा गोविंद विश्राम, इसी कारण से परम भगवान गोविंद सदैव अपने शुद्ध भक्तों के हृदय में निवास करते हैं। तो ऐसे ही जब रोहिणी माता उनको बता रहे थे कि ऐसा नहीं है कि वृंदावन के लोगों ने कोई मंत्र विशेष कंट्रोल करने का कोई मंत्र जप किया जिसके कारण कृष्ण उनके वश में हो गए, बल्कि नहीं, केवल केवल कृष्ण की जो प्रेममय सेवा करने की भावना है जिसके कारण कृष्ण ब्रजवासियों के वशीभूत हो गए और द्वारका में रहते हुए भी वो आनंदित नहीं थे, द्वारका में रहते हुए भी वो सुखी नहीं थे, इसलिए भगवान सदैव ब्रजवासियों के प्रति अपने प्रेम की भावना द्वारका में रहकर प्रकट किया करते थे। तो इस कारण से रोहिणी माता जब ये सारी चीजें बता रहे थे तो उस समय कृष्ण को लगा कि अभी मुझे जाना चाहिए। जब रोहिणी माता ने अपना प्रवचन देना शुरू किया था तो रोहिणी को पता था कि कृष्ण आ सकते हैं बीच में, तो रोहिणी माता ने क्या किया कि जो मेन गेट है वहां किसी को खड़ा होना चाहिए प्रवचन शुरू होने से पहले, जैसे ही कृष्ण बलराम आएंगे दूर से देखकर मुझे बताओ तो मैं आप बोलना क्या कर दूंगी बंद कर दूंगी। तो सोचा कौन खड़ा रहेगा, तो 16,108 रानियों ने कहा हम में से कोई खड़ा नहीं रहेगा। तो उस समय कौन थी वह छोटी, कौन थी सुभद्रा, सुभद्रा को कहा सुभद्रा तुम जाकर मेन गेट में सिक्योरिटी के रूप में खड़ी रह जाओ, और जैसे ही कृष्ण बलराम आसपास दिखाई दे तुरंत मुझे बता दो। तो सुभद्रा देवी गई वहां और सुभद्रा देवी जाकर खड़ी हो जाती हैं। आपको पता है कैसे खड़ी हो जाती हैं? बचपन में जब कोई घर में आता है तो बच्चे उनको माता पिता पिताजी ऑफिस से आते तो उसको रोकने के लिए दो हाथ, एक हाथ इधर एक हाथ इधर, एक पाव इधर एक पाव इधर, ऐसे खड़े हो जाता है। रुक्मिणी वही सुभद्रा वैसे खड़ी हो गई ऐसे बिल्कुल कि किसी को प्रवेश नहीं है अंदर। हाँ तो सुभद्रा देवी वहां खड़ी तो हो गई, लेकिन जैसे जैसे कृष्ण कथा हो रही थी, कृष्ण के लीलाओं का वर्णन हो रहा था, रुक्मिणी देवी सारी 11 साल तक कृष्ण ने जो जो लीलाएं वृंदावन में किए थे उन सारे लीलाओं का वर्णन कर रहे थे, एक के बाद एक ऐसा वर्णन कर रहे थे। तो उस समय सुभद्रा देवी कृष्ण की उस मधुरतम लीलाओं को सुनकर बिल्कुल शिथिल हो गए और उसको पता ही नहीं चला कि मैं यहाँ गेट पे खड़े हूँ और मेरे पास कुछ सेवा भी है करने के लिए। तो सुभद्रा देवी वहां खड़ी रह गई और उस समय कृष्ण का आगमन हो जाता है। भगवान कृष्ण सुभद्रा जो सुधर्मा सभा भवन है उसको छोड़कर बलराम का हाथ पकड़कर वहां पहुंचते हैं और पहुंचकर देखते हैं कि अरे अंदर तो मेरी चर्चा हो रही है। कृष्ण आनंदित हो जाते हैं और वहां आनंदित होकर भगवान कृष्ण देखते हैं सुभद्रा वृक्ष पे खड़ी हुई है, तो सुभद्रा के एक ओर कृष्ण खड़े हो जाते हैं और दूसरी ओर कौन खड़े हो जाते हैं? बलराम खड़े हो जाते हैं। और ये तीनों जो रोहिणी के द्वारा वर्णित कृष्ण कथा है, वृंदावन की जो लीलाएं हैं, उनका वर्णन सुनते जा रहे थे। जब ये सुन रहे थे तो सुनते सुनते ये तीनों महाभाव, हाँ भाव के अलग अलग स्तर हैं, उनमें एक महाभाव का जो स्तर है हाँ उसको प्रकट करते हैं। उसमें उनके शरीर में सारे महाभाव के विकार प्रकट हो जाते हैं जिसके कारण भगवान कृष्ण के हाथ हाँ क्या होते हैं? अंदर चले जाते हैं और उनके जो पांव हैं वो भी चरण भी अंदर चले जाते हैं, उनकी जो आंखें हैं वो बड़ी बड़ी होने लगती हैं और फिर भगवान जगन्नाथ को या कृष्ण को ये रूप प्राप्त होता है जगन्नाथ स्वामी के। तो ऐसे श्रवण करते करते अपनी ही लीला को भगवान ने जब सुना तो वही कृष्ण हाँ भगवान इस रूप उनका प्रकट होता है। तो उनके साथ बलराम को भी वैसी स्थिति हो गई। अभी सुभद्रा बीच में थे, उनको कोई हाथ नहीं है, उनके हाथ कैसे थे? ऐसे थे, वो भी ऐसे चले गए हाथ पांव, इसलिए दोनों पांव हाथ दिखाई देते हैं थोड़े बहुत, लेकिन सुभद्रा देवी बीच में थी तो उनके पास कोई हाथ आदि नहीं है, वो सारे अंदर चले जाते हैं और इन तीनों विशेष विशेष रूप में गेट में ही खड़े रहते हैं और अंदर एक कृष्ण कथा जोर शोर से हो रही है। सारे रानियां श्रवण करने में मग्न है, रोहिणी माता वर्णन करने में मग्न है और उसी समय एक डिवोटी आ जाते हैं बाहर से। कौन होंगे वो? नारद। ये नारद अमेजिंग पर्सनालिटी है। नारद नहीं हो तो कृष्ण कथा में आनंद नहीं है, इसलिए नारद विशेष विशेष भक्त हैं। तो ऐसे नारद का काम है कृष्ण कथा में फ्लेवर ऐड करना, जैसे आइसक्रीम में अलग अलग फ्लेवर्स होते हैं, सब्जियां बनाते तो अलग अलग मसाले डालते हैं हम, तो उसी प्रकार से कृष्ण कथा में अलग अलग स्वाद लाने के लिए ये फ्लेवर ऐड करने का काम किसके पास है? नारद के पास। हजारों लीलाएं हैं, ये नारद का वर्णन करने लगे तो कितना पूरे एक महीना भर हम बोल सकते हैं नारद की चर्चा। तो ऐसे नारद जब वहां से गुजरे तो नारद ने देखा ये तीनों पूर्ण रूप में ऐसे स्तब्ध होकर बड़ी बड़ी आंखें हो गई, विचित्र सा रूप हो गया है और श्रवण करने में मग्न है। तो इससे हम सीख सकते हैं यदि हम इस भौतिक देह को परिवर्तन करके आध्यात्मिक देह चाहते हैं तो हमें क्या करना होगा? श्रवण करना होगा। जैसे भगवान कृष्ण ने स्वयं सुना, तो ऐसे नारद जब गुजरे हैं तो नारद चुप नहीं बैठे,
नारद वहां से जाते जाते जोर से चिल्लाते हुए कहने लगे, मैंने देखा, मैंने देखा, मैंने देखा। अब ये सुना किसने? कृष्ण ने। कृष्ण ने सुना, रे कौन चिल्ला रहा है, मैंने देखा, मैंने देखा, मैंने देखा। तो कृष्ण का भी भाव के मोड में थे, भाव वेश में थे, तो भगवान ने यहां से थोड़े से ठीक हो गए। देखा किसने हम तीनों को देखा, तो देखा नारद जी खड़े हैं वहां अपना वीणा लेकर। नारद मुनि बाजाए वीणा, राधिका रमन नाम है। तो नारद मुनि ने कहा, मैंने देखा, मैंने देखा, मैंने देखा। तो भगवान कृष्ण शर्मा गए। कृष्ण बलभद्र और सुभद्रा फिर से नॉर्मल रूप में खड़े हो गए। अब उन्होंने कृष्ण ने कहा, नारद क्या हो गया तुम्हें, क्या देखा तुमने? उन्होंने कहा, आपका ये विशेष विशेष जो रूप है वो मैंने देखा है। तो भगवान कृष्ण उनको कहते कि नारदा, हाँ तुम बहुत सौभाग्यशाली हो, हम इस ये जो समय तक पहली बार भगवान ने द्वारका में ये रूप प्रकट किया था, और दूसरी बार भगवान ने रूप प्रकट किया था जब ये तीनों रथ में बैठकर वृंदावन में महावन में जब इन तीनों ने प्रवेश किया था, तब दूसरी बार ये जगन्नाथ का रूप उन्होंने प्रकट किया था। तो इस प्रकार से जब नारद को भगवान कहते हैं कि मांगो नारद तुम कुछ, मैं बहुत खुश हूं अभी, अपने बारे में सुना है मैंने, तो नारद को कहते कि कुछ मांगो, तो भक्त का स्वभाव है वो अपने लिए कुछ भी नहीं मांगता, ये भक्त का विशेष गुण होता है। इसलिए भगवान के जो भक्त हैं उनको देवताओं से भी श्रेष्ठ कहा गया है भागवतम के 11वें स्कंध में। कहते कि देवताओं की क्या बात, देवता तो स्वार्थी हैं, वो अपने चक्कर में पड़े हुए हैं, कोई उनको कुछ ऑफर कर दे, कभी कोई पूजा न करे तो गुस्सा हो जाए। भक्तों का ऐसा नहीं है, भक्तों को कोई मान दे, सम्मान दे, अपमान करे, घृणा करे, लेकिन उनके स्वभाव में व्यवहार में कभी परिवर्तन नहीं आता है, ये उनकी विशेषता है। तो ऐसे नारद हमेशा दूसरों के हित के बारे में सोचते हैं। तो नारद ने कहा कि हे कृष्णा, मैं चाहता हूं कि आपका ये जो रूप है तीनों का एक साथ इस भूतल में किसी एक स्थान में नियुक्त होना चाहिए, किसी स्थान में आप रह जाओ। तो भगवान कृष्ण कहते हैं, तथास्तु, मैं इन अपने ब्रदर सुबलभद्र और सुभद्रा के साथ निवास करूंगा, अपने धाम नीलाचल क्षेत्र में मैं निवास करूंगा। तो नारद को ये चीज वो बताते हैं, नारद को भगवान ये आशीर्वाद देते हैं, जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा महारानी के। तो नारद को भगवान ये विशेष विशेष आशीर्वाद प्रदान करते हैं और नारद अत्यधिक खुश हो जाते हैं। और नारद दूसरी चीज भी उनसे मांगते हैं। नारद उस समय तीन चीजें मांगते हैं। एक तो चीज उन्होंने मांगी थी उनसे भगवान कृष्ण से कि आप भूतल में किसी एक स्थान में निवास करो, और दूसरा उन्होंने मांगा था कि आपका ये जो रूप है वो पतित पावन होना चाहिए, तब दर्शनात् मुक्ति, जो भी व्यक्ति आपका दर्शन करेगा आपके दर्शन मात्र से क्या होना चाहिए, मुक्त हो जाना चाहिए वो व्यक्ति। और तीसरी चीज नारद ने मांगी थी कि पूरे विश्व में, इस विश्व के हर कोने कोने में आपके विग्रह की आराधना होनी चाहिए। और वास्तव में ये नारद के डिमांड थे जिसके कारण से श्रील प्रभुपाद के माध्यम से पूरे विश्व में कृष्ण जगन्नाथ के रूप में उनके इस विशेष विग्रह के रूप में क्या है, पूजा स्वीकार कर रहे हैं। तो इस प्रकार से भगवान जगन्नाथ का प्राकट्य होता है इस संसार में, और भगवान जगन्नाथ प्रकट होते हैं विशेष रूप से द्वारका में अपनी बहन सुभद्रा और बलराम के साथ। तो ऐसे जब वो प्रकट भी हुए हैं, और इवन हम देखते हैं कि जगन्नाथपुरी में भगवान जब अपने विग्रह के रूप में विराजमान हो गए, तो महाराज जो इंद्रद्युम्न थे जिनके लिए भगवान जगन्नाथ प्रकट हुए थे, तो इंद्रद्युम्न ने भी भगवान से तीन चीजें मांगी थी। भगवान ने उनको कहा था कि हे इंद्रद्युम्न, आप मुझसे कोई तीन चीजें मांगो। तो राजा इंद्रद्युम्न ने भी उनसे तीन चीजों की कामना की थी। महाराज इंद्रद्युम्न ने कहा था कि हे जगन्नाथ, आप मेरे लिए इस संसार में प्रकट हुए हो, तो आप क्या करो, मुझे तीन चीजें प्रदान करो। और इंद्रद्युम्न ने भगवान की सेवा से संबंधित तीन चीजें मांगी थी। इंद्रद्युम्न ने कहा था कि हे कृष्णा, आप इस संसार में प्रकट हो ही गए हो यहाँ जगन्नाथपुरी में और इस विशाल मंदिर में निवास कर ही रहे हो, तो एक चीज मुझे सर्वप्रथम दीजिए कि मुझे कोई भी पुत्र नहीं चाहिए। कोई है इस संसार में तो भगवान से मांगे कि मुझे पुत्र नहीं चाहिए। तो भगवान कहते कि क्यों नहीं चाहिए इंद्रद्युम्न तुम्हें पुत्र? तो वो कहते हैं कि मैंने इतना विशाल मंदिर बनाया है और हजारों हजारों लोग आएंगे और मेरे पुत्र आदि होंगे, तो वो कहेंगे कि ये जो जगन्नाथ है ये मेरी प्रॉपर्टी है, उनका धन, उनका प्रणामी, उनकी सुविधाएं और मेरे पुत्र परिजन उसको अपनी सेवा में इस्तेमाल करेंगे। इसलिए महाराज इंद्रद्युम्न ने अपने लिए पुत्र की कामना नहीं की। और इंद्रद्युम्न ने यह भी मांगा कि हे भगवान, आप इस संसार में अवतरित हुए हो तो आपका जो मंदिर है वो कम से कम समय में बंद, समय के लिए बंद होना चाहिए। अधिक अधिक समय के लिए आपके जो द्वार है इस संसार के सारे जीवों के लिए खुले होने चाहिए। इसलिए जगन्नाथपुरी हम जाते हैं तो भगवान का मंदिर 3-4 घंटे के लिए रात्रि में बंद रहता है, अदरवाइज भगवान के भी रात के 2 बजे सोते हैं और फिर 4 बजे उठ जाते हैं। कभी भी जाओ आप, हमेशा भगवान जगन्नाथ का क्या करते हो, दर्शन करते हो। तो जगन्नाथ की किसी को कृपा प्राप्त करनी है तो उसके लिए सरल विधि है। क्या है सरल विधि? अधिक से अधिक भगवान जगन्नाथ का दर्शन करना चाहिए और अधिक से अधिक भगवान जगन्नाथ का प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। तो ऐसे जब ये 2 चीजें इंद्रद्युम्न ने मांगे और तीसरी चीज के लिए इंद्रद्युम्न ने भगवान से प्रार्थना की। हाँ, क्या प्रार्थना की? कि हे जगन्नाथ, आप जगन्नाथपुरी में निवास कर रहे हो तो आपकी जो उंगलियां हैं वो हमेशा गीली होनी चाहिए। मतलब पूरे दिन आप क्या करते रहो, खाते रहो और जितना अधिक आप खाओगे उतनी ही अधिक मात्रा में प्रसाद के रूप में आपके भक्तों को आपकी कृपा प्राप्त होगी। तो इस प्रकार से भगवान जगन्नाथ जगन्नाथपुरी में अवतरित होते हैं और इंद्रद्युम्न महाराज आपको ये 3 वर प्रदान करते हैं जिसके कारण इस संसार में सारे जीव भगवान जगन्नाथ की क्या कर रहे हैं, कृपा प्राप्त कर रहे हैं। तो ऐसे जगन्नाथ देव, जैसे मैंने शुरुआत में भी कहा कि जिनको भक्त वत्सल जगन्नाथ कहा जाता है, क्योंकि भगवान जगन्नाथ का जो लगाव है सबसे अधिक अपने भक्तों से है, उनको अपने भक्त बहुत अधिक प्रिय है। इसलिए जगन्नाथ के हजारों हजारों भक्तों का वर्णन आता है उनकी कई सारी लीलाओं के साथ। तो कुछ लीलाओं का वर्णन थोड़े समय के लिए मैं करूंगा। तो भगवान जगन्नाथ जी अलग अलग भक्तों से आदान प्रदान करते हैं जगन्नाथपुरी में जब वो निवास करते हैं अपने मंदिर में। तो एक डिवोटी थे भगवान जगन्नाथ के जिनका नाम था रघु। तो ये जो रघु है ये वैसे अयोध्या के निवासी थे। जब उन्होंने सुना कि जगन्नाथपुरी में भगवान इतने बड़े विशाल मंदिर में निवास करते हैं जो अपने भक्तों से सबसे अधिक प्रेम रखते हैं, तो इन्होंने सोचा कि मुझे यहाँ से जगन्नाथपुरी जाना चाहिए और वहां जाकर जगन्नाथ का दर्शन और उनकी सेवा करनी चाहिए। तो ये अपना अयोध्या आदि छोड़कर निकलते हैं जगन्नाथपुरी। जब जगन्नाथपुरी जाते हैं तो वहां जाकर भगवान जगन्नाथ के मंदिर में प्रवेश करते ही वो भगवान जगन्नाथ को देखने लगते हैं। अब भगवान जगन्नाथ को देखते ही वो सोचते कि ये तो मेरे प्रभु राम है, हाँ, जिनका मैं दर्शन अयोध्या में करता हूँ। तो ऐसे रघु भगवान की सेवा करने के लिए भगवान के मंदिर के दरवाजे के बाहर ही रहने लगे। वहां रहते रहते उन्होंने सोचा मुझे कुछ ना कुछ भगवान को अर्पित करना चाहिए, कुछ ना कुछ उनकी सेवा करनी चाहिए। हाँ, तो उन्होंने सोचा क्या कर सकता हूँ मैं। तो गए उस कई सारे फूल तोड़ के लाए और फूल लेके आए तो उन्होंने सोचा मैं माला कैसे बनाऊं। उनके पास कोई धागा नहीं था, सुई नहीं थी, तो उनको एक केले का पेड़ नजर आया। केले के पेड़ के धागे भी निकलते हैं, उसका ऐसा एक धागा ऐसे खींच लिया और उसी में फ्लावर्स को डाल के बांधते हुए गांठ लगाते लगाते बहुत सुंदर माला बनाई। ऐसी माला बनाई अब उनका हृदय ऐसे बाहर आ रहा था कि कब मैं जगन्नाथ को ये जो माला है वो अर्पित करूं। तो ऐसे वो निकले मंदिर के अंदर प्रवेश किया और पंडा के पास गए, उनको कहा जगन्नाथ को माला अर्पित कीजिए। तो उस सेवक ने कहा अरे बीच भाग यहां से, ये तो अशुद्ध है, हम केले का जो थ्रेड निकालकर उसकी फूलों की माला बना रहे हो, ये अशुद्ध है, भगवान को अर्पित नहीं की जा सकती, तुम निकल जाओ यहाँ से। तो रघु ने वो माला दी और सीढ़ियां उतर कर बाहर आ गए और माला को अपने सामने रखा, रात भर रोते रहे भगवान जगन्नाथ के स्मरण में, रो रहे हैं, माला को देख रहे हैं, जगन्नाथ का स्मरण कर रहे हैं। और शाम को जब भगवान को सुलाते हैं पुजारे, तो भगवान जगन्नाथपुरी में सबसे आखिरी एक ड्रेस पहनते हैं जिसको कहा जाता है बड़ा श्रृंगार वेश, मतलब कृष्ण वहां रह रहे हैं लेकिन वृंदावन में जो वेश भगवान धारण करते हैं वही वस्त्र वही वेश भगवान जगन्नाथपुरी में सोने से पूर्व पहनते हैं। और वो वेश तुलसी मालाओं से बनता है, फ्लावर से बनता है, और जो गीत गोविंद आदि लिखा होता है उसके द्वारा बनता है। अब उसको भगवान धारण करते हैं, वृंदावन का स्मरण करते हैं और शयन करते हैं। तो भगवान को उस दिन वो पुजारी जन सारे फ्लावर्स लगा रहे थे, मालाएं पहना रहे थे, लेकिन एक भी फूल एक भी माला जगन्नाथ जी अपने शरीर पर नहीं ले रहे थे। पुजारी लगा रहा था, भगवान ऐसे फेंक रहे थे। आज भगवान बहुत गुस्से में आ गए थे, इसलिए जगन्नाथ सर्वसाधारण विग्रह नहीं है। भगवान जगन्नाथ किसी को निराश नहीं करते, वो क्विकली किसी भी भक्त के साथ आदान प्रदान करते हैं, ये उनकी विशेषता है। तो ऐसे जब हो रहा था, पुजारी गण इतने फूल लगा रहे थे, प्रयास कर रहे थे, जगन्नाथ जी ना माला पहना रहे हैं ना फूल स्वीकार कर रहे हैं, तो उस समय पुजारियों ने सोचा कि क्या हो गया, कुछ तो महा अपराध हो गया है हमसे, तो इसके लिए हम अंदर ही सोएंगे मंदिर के अंदर, देखेंगे कि क्या अपराध हुआ है। तो सारे पुजारी गण गर्भगृह में सो जाते हैं। भगवान जगन्नाथ स्वप्न में आकर आदेश देते हैं कि अरे आप सब कैसे मेरे सेवक हो, एक मेरा भक्त जो इतना प्रीति पूर्वक मेरे लिए माला लेकर आया था और तुम उसको धुतकार दिया, उसको भगा दिया और आप मुझे माला पहना रहे हो स्वयं। तो भगवान बहुत क्रोधित हो गए कि जाओ अभी उससे वो माला लेकर आओ। वो माला सामने रखा हुआ है, कुछ भी खाया नहीं, पिया नहीं, सोया नहीं, माला को देख रहा है, मेरा स्मरण कर रहा है और निरंतर अश्रुपात कर रहा है। तो ऐसे भगवान जब आदेश देते हैं तो पंडा जन जाते हैं, रघु को ले आते हैं, माला को नहीं लाते, दोनों को लेके आते हैं, माला को भी लाते हैं और भक्त को भी ले आते हैं, और माला भगवान जगन्नाथ उनके दी हुई पहनते हैं। तब से भगवान का वो जो डिवोटी था रघु, उनसे बहुत फ्रेंडली सख्य का संबंध हो गया। भगवान को कुछ बातें भी करने थे तो वो रघु को बोल देते थे। तो ऐसे रघु से इतना प्रेम का संबंध हो गया, मैं कई बार वो लीला कहता हूँ कटल की, कि एक बार भगवान जगन्नाथ ने सोचा आजकल मेरे हृदय में कुछ तो खाने की इच्छा हो रही है, तो हम अपने प्रिय मित्र से बोलते ना अरे आजकल मुझे खाने की इच्छा हो रही है, सबके पास नहीं बोलते। तो भगवान जगन्नाथ वो रघु को कहते कि रघु मुझे बहुत दिन हो गए कटहल नहीं खाए और अभी मेरा मंदिर इतने ऊंचाई पर है, वो राजा का जो बागान है कटहल का, वहां बहुत सारे कटहल पक गए हैं और जैसे हवा बहती है तो हवा की सुगंध सीधा मेरे मंदिर में पहुंच जाती है और उस सुगंध को सुनकर मैं पागल हो जाता हूँ, मुझे लगता है कि कब ये श्री मंदिर छोड़ूंगा और वो कटहल के बागान में भागूंगा कटहल खाने के लिए। भगवान को कहते कि भगवान हे जगन्नाथ इतना तकलीफ क्यों, मैं ले आता हूँ ना बैलगाड़ी भर के ले आता हूँ, आराम से सिंहासन बैठकर सिंहासन पर बैठकर खाइए। कहते नहीं, अरे तुम्हें याद है मैं वृंदावन में जब निवास कर रहा था तब मेरी माता विशेष गायों का दूध निकालकर दही बनाती थी, मक्खन बनाती थी, लेकिन मैं घर में नहीं खाता था, चुरा के खाने में जो आनंद है वो इन सब चीजों में नहीं है, इसलिए आज मैं आपके साथ जाऊंगा और हम दोनों चुरा कर कटहल खाएंगे। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो भगवान जगन्नाथ एक हाथ उनके कंधे में डालते हैं
रघु के पार निकल पड़ते हैं।
वास्तव में कृष्ण से अधिक कोई हमसे प्रेम नहीं कर सकता, कृष्ण से अधिक हाँ कोई हमसे अच्छा व्यवहार नहीं कर सकता। लेकिन इस संसार में हमारा हृदय किसी ना किसी को ढूंढ ही रहा है जो सबसे अधिक हमसे प्रेम करें या हम किससे सर्वाधिक प्रेम करें। लेकिन हम बोलते हैं इस संसार में हम किसी से भी अपना हृदय दें, एक न एक दिन क्या होने वाला है, निराशा ही आने वाली है। तो ऐसे रघु भगवान का हाथ जैसे कंधे में पड़ा, रघु सोचने लगा कि कितना बड़ा सौभाग्य है, जगन्नाथ हाथ डाल के मेरे कंधे में लेके जा रहे हैं। ये पहुंच गए शाम के समय में, थोड़ा सा रात्रि हो गया था, गार्डन में पहुंच गए और अलग अलग कटहलों के पेड़ों के पास जाकर पहुंचते तो जगन्नाथ कहते जो बड़े बड़े कटहल जिसमें होंगे ना उसी का कटहल पहने। तो जैसे कि पेड़ के पास गए तो जगन्नाथ कहते कि हे रघु देखो इसके बहुत बड़े बड़े कटहल है लेकिन ऊंचाई पर है। तो रघु कहते हैं चढ़िए आप। जगन्नाथ कहते आ रहे मेरे पास ना हाथ है ना पाँव है, कैसे चढ़ू मैं, रघु तुम चढ़ो। तो रघु चढ़ता है ऊपर और रघु को भगवान कहते कि तुम नीचे, रघु कहता है कि आप नीचे वेट करो, मैं जैसे कटहल तोड़ूंगा ऊपर से फेंकूंगा, आप कैच कर लीजिए, गिरना नहीं चाहिए नीचे। तो जैसे रघु चढ़ता है ऊपर, कटहल तोड़ता है जो बहुत पका हुआ था रसीला और सुगंधित, तोड़ा और देखा कि जगन्नाथ जी आप होना नीचे, आप तैयार हो, मैं ऊपर से फेंक रहा हूँ। तो जगन्नाथ कहते कि हाँ मैं तैयार हूँ। तो जैसे भगवान ने कहा तैयार हो और जैसे उन्होंने ऊपर से फेंका, जगन्नाथ जी वहां से भाग गए। भागे तो इतना बड़ा कटहल जैसे गिरा वो टूट फूट जाता है, बहुत जोर से आवाज होती है और वो गार्डन के बाहर सिक्योरिटी गार्ड थे राजा, हाँ राजा के वो सारे गार्ड आते हैं, घूमते क्या हो गया, कौन चोर पहुंच गए, देखा। बल्कि ये रघु की जब से माला भगवान ने स्वीकार किए थे, जगन्नाथपुरी में कोई ऐसा नहीं था जो रघु को नहीं जानता था और रघु सबसे फेमस डिवोटी था, हर कोई उनको आदर सम्मान प्रेम करता था उनसे। और आज देखा कि वही भक्त आगे चोरी कर रहा है। तो ये पूछिए जो आगे सिक्योरिटी देखा है ये डिवोटी तो बड़े महान है लेकिन आज आकर चोरी कर रहे हैं, क्या आफत आ गई इनके जीवन में। तो इन्होंने राजा को बुलाया, राजा आ गए, कहा हाँ प्रभु जी नीचे आई है, राजा बोल रहे थे उनको अभी ये जो रघु हैं वो नीचे नहीं आ रहे थे, अब नीचे आ गए। तो भगवान राजा कहते हैं कि हाँ हे महाशय आपको यदि कटहल ही चाहिए होते हैं तो मुझे जस्ट इन्फॉर्म कर देते हैं, मैं आपके घर में बड़े बड़े कटहल भेज देता। लेकिन कहते रघु कहते मुझे नहीं चाहिए थे, कि किसको चाहिए थे, जगन्नाथ जी को चाहिए थे, उन्होंने मुझे फंसाया है। हाँ तो फिर तब राजा बैलगाड़ी भरता है और जगन्नाथ टेम्पल में क्या करते हैं, बहुत सारे हाँ कटहल भेजे जाते हैं। तो ऐसी कई सारी घटनाएं हैं भगवान जगन्नाथ की। एक घटना मुझे याद आती है कि भगवान जगन्नाथ का जो टेम्पल है उनके बाहर एक कुटिया हुआ करते थे जिसमें भक्त रहते थे तमिलनाडु के, उनका नाम था प्रभुदास। अरे उस समय था जब जगन्नाथपुरी में महाराज प्रताप रुद्र थे चैतन्य महाप्रभु के समय में। तो ये जो प्रभुदास था वो अपनी कुटिया में सिंह द्वार जो मेन गेट थे जगन्नाथ टेम्पल का उसके पास उनकी कुटिया थी, अकेले रहते थे और उसमें पान बनाते थे, पान माले की जो टपरी होती है ना वैसे वो पान बनाने का काम था, पान बनाते थे और बेचते थे। तो भगवान जगन्नाथ का दर्शन करने जब जाते थे ये पान बनाने वाले का भी इतना प्रेम जगन्नाथ से कि जगन्नाथ को देखने मात्र से आंसू आंखें डब डबा जाते थे पानी से, ये प्रेम का लक्षण है। भगवान से इतना प्रेम होना चाहिए कि उनका नाम लेने मात्र से, उनके गुणों को स्मरण करने मात्र से हमारा हृदय ऐसे पिघल जाना चाहिए, आंखों में क्या आ जाने चाहिए, आंसू आ जाने चाहिए। तो ये भौतिक विकार कभी भी हमारे हृदय में फिर वास नहीं करेंगे। तो ऐसा ही जो पान वाला जाता है वो भगवान को देखने मात्र से उसकी आंखें भर जाती है आंसुओं से,
और वो इतना आनंदित होता है जगन्नाथ को देख के, फिर वापस आकर अपना कार्य करता था और वो जाकर देखता था कि भगवान जगन्नाथ को 56 प्रकार के भोग लग रहे हैं 60 बार, कितनी बार दिन में 60 बार, 56 प्रकार के भोग खा रहे खा रहे खा रहे उनको लगा। लेकिन खाने के बाद आखिर में इनको पान खिलाना चाहिए, क्या खिलाना चाहिए, लेकिन उस समय में पान ऐड नहीं हुआ था। जगन्नाथ मंदिर में जितने भी प्रसाद भगवान की सेवा में ऐड होते हैं उसके पीछे एक एक अमेजिंग कथाएं हैं। हाँ, खाजा सुना है ना आपने, खाजा प्रसाद मुंदी लड्डू ऐसे कई सारे पदार्थ हैं, इन सबके अलग अलग कथाएं हैं, स्टोरीज हैं। तो ऐसे ये सोचते थे अरे भगवान को पान खाना चाहिए हमें, हाँ तो फिर ये मन में ही पान ऑफर करके आ जाते थे। तो ऐसे जब कुछ दिन बीते हैं तो जब मंदिर बंद हो जाता था और सारे पुजारी इस पंडाल चले जाते थे तो भगवान जगन्नाथ और बलराम, कृष्ण और बलराम बाहर निकलते थे अपने बिल्कुल लंबे लंबे बालों के साथ और पीतांबर आदि धारण किए हुए और बहुत सुंदर उनका वर्ण आदि, ऐसे सिंहद्वार से रात्रि में निकलते थे संध्या के समय में बाहर, निकलते ही इस कुटिया में घुस जाते थे, घुस जाकर वहां जाकर उस पान वाले के सामने ऐसा हाथ कर देते थे, कहते पान दे दो। और वो पान वाला ऐसे देख रहा है, उनका नाम क्या था, प्रभुदास, पान बना रहा है, उनके मुख कमल को देखते जा रहा है, जैसे वो मांगते हैं मांगकर तुरंत उनके हाथ में रखता है, वो भूल भी जाता है कि इनसे क्या लेना चाहिए, मुझे पैसे लेने चाहिए। और भगवान जगन्नाथ बलराम खाके अपने वोट ऐसे लाल लाल करके, पता है आपको जो पान खाते हो हम दिखाते रहते हैं, हाँ लाल लाल वोट करते हुए ऐसे सीना तान कर मंदिर के अंदर घुसते हैं हम महाराज की तरह राजा की तरह। तो एक बार उस समय एक महान डिवोटी थे जिनका नाम था बलराम दास, ओडिशा के एक महान पोएट डिवोटी है जिन्होंने बहुत सारे गीत लिखे हैं सुंदर। तो वो जगन्नाथ मंदिर के सामने ऐसे गीत गाते हुए जा रहे थे और गीत गाते गाते वो खड़े हो गए मेन गेट के सामने और देखा अरे आज मैं विचित्र दृश्य देख रहा हूँ, कोई दो नवयुवक मंदिर से बाहर आ रहे हैं, पीतांबर धारण किए हुए हैं, लैविशली उनके केस वगैरह हैं, इतने सुंदर लग रहे हैं और एक कुटिया में घुस रहे हैं, और जब बाहर आ रहे हैं तो उनके होंठ ऐसे लाल लाल हो गए हैं, पान चबा चबा के आ रहे हैं और फिर मंदिर में घुस रहे हैं। तो उनको कुछ डाउट हो गया, सोचे ये कौन लोग हैं। तो ऐसे देखा एक हफ्ता हो गया मैं इनको देख रहा हूँ, फिर एक हफ्ते के बाद वो जो बलराम दास है वो कुटिया में गए जो पान वाले के पास जिनका नाम था प्रभुदास, उनके पास गया और उन्होंने कहा आपके यहाँ कौन आता है पान लेने के लिए शाम के समय। वो कहते दो नवयुवक आते हैं। वो कहते पैसे देते हैं क्या वो, अरे मैं तो पैसे लेना ही भूल जाता हूँ उनसे। ये बलराम दास कहते हैं कि बिजनेस में कभी भी पैसे नहीं छोड़ने हैं, हाँ तुम तो इतना कितने गरीब हो, पान से क्या आमदनी तुम्हारी होने वाली है। तो आगे बार जब वो दोनों आएंगे उनसे क्या लेना, पैसे लेके ही रहना, और वो मना करेंगे तो उनका, क्योंकि भगवान का बहुत मूल्यवान चद्दर था, वो पैसे नहीं देंगे तो उनको बोलो चद्दर गिरवी रख के जाना, कल आओगे पैसे दे दो चद्दर लेके जाओ, जो शॉल है। तो ऐसे ये बलराम दास जाके कुछ करके आ गए, बोल के आ गए। तो अभी देखा ही खड़े होकर किसी कोने में ये दोनों बाहर आ गए, फिर से ऐसे सीना गर्दन ऐसे ऊपर करके घुस गए, क्योंकि प्रसाद इतने पूरे दिन पाते रहते थे तो फाइनली क्या चाहिए उनको, पान। तो ऐसे वो गए और वहां जो सिर्फ पहुंचते हैं उनके पास जाकर ऐसा हाथ आगे करते हैं, तो हाथ आगे करते तो वो भी व्यक्ति हाथ आगे करता है, किसलिए हाथ आगे करता है, पैसे चाहिए टका, मुझे पैसे चाहिए थे, पैसे दे दो। कहते देखो इतने दिनों से आप लोग पान खा रहे हो और अभी तक पेमेंट नहीं किया है, आज मुझे पैसे चाहिए तभी पान दूंगा। अभी इनके पास कोई इंडियन करेंसी थोड़े थी, इंद्र में एक बार जगन्नाथ मंदिर में आए थे, वो भी एक लीला है सुनाऊंगा, तो ऐसे जब इन्होंने कहा अरे ये पैसे मांग रहे हैं इंडियन रुपीस, तो जगन्नाथ कहते हैं देखो बलराम क्या करें, तो कहते हैं मैं आज पान नहीं दूंगा कुछ भी करो, और इनको पान खाए बिना नहीं रह सकते। तो इन्होंने कहा, उसने कहा चलो, उन्होंने कहा ठीक है कल दे देंगे जितना भी पिछला पेंडिंग है वो कल हम दे देंगे सारा पैसा। वो कहते कल नहीं आओगे तो आज ही देना चाहिए। तो फिर उन्होंने कहा ठीक है, तो उस व्यक्ति ने कहा कि आपका इतना जो मूल्यवान शॉल है वो सारे दो शॉल सीधा रख के चले जाओ, और वो शॉल वहां रख देते हैं बहुत दुखी होकर। शॉल रखते लेकिन पान छोड़ते नहीं है, पान खाते हैं, बाहर फिर निकलते वैसे होंठ लाल करके अंदर घुसते हैं। अंदर जब घुसे जाकर अपने रत्न सिंहासन पर बैठे हैं, सुभद्रा देवी बीच में देखते रहते हैं कहां से आ गए, दोनों के होंठ कैसे हैं, लाल लालिमा से युक्त हैं। तो जैसे ही सुबह हो गई पुजारी जन आ गए, उन्होंने देखा अरे क्या हो गया, एक तो इनके होंठ बड़े लाल लग रहे हैं और दूसरा उनके शॉल नहीं है जो इतनी महंगी है। तो पुजारी सोचने लगे चोर यदि मंदिर के अंदर आता तो वो शॉल लेके नहीं भागता, वो इतने सारे ज्वेलरी से वो लेके भागता, ऐसा मूर्ख चोर नहीं है कि शॉल लेके भागे। तो फिर ढूंढा गया, प्रताप रुद्र ने कहा कि जरूर ये जो सेवक गण है ना मंदिर में उन्होंने गायब कर दी होगी शॉल, ठंड के दिन है। तो सारे सेवकों को इकट्ठा कर दिया, लाइन में खड़ा कर दिया और सबको पूछा गया शॉल भी है क्या। तो बेचारे ऐसे वहां जो सेवक हाथ जोड़ के खड़े थे उस समय प्रताप रुद्र महाराज हाँ चिंतित है। तो ये बलराम दास उनके पास जाकर कहते हैं कि मुझे पता है शॉल कहाँ गिरने रखी है। तो बलराम दास कहते हैं कि जरूर, बलराम दास पहले खुद गए उस पान वाले के पास जाके देखा नहीं वो शॉल तो इधर है, फिर राजा को ले जाया गया और राजा जाके देखता है कि अरे जगन्नाथ जी की शॉल्स तो यहाँ है। फिर वो जो डिवोटी है वो उनको बताते हैं कि कैसे हैं हाँ भगवान कृष्ण और बलराम यहाँ आते हैं और रोज क्या करते हैं पान स्वीकार करते हैं। तो राजा ने तब से क्या कर दिया, प्रताप रुद्र महाराज ने जगन्नाथ के भोगा में ऐड कर दिया तांबूल पान। तब से भगवान क्या करते हैं रोज शाम को हाँ तांबूल का पान का शरबत करते हैं। तो ऐसे भगवान जगन्नाथ हमसे किसी भी चीज की अपेक्षा नहीं करते, भक्त वत्सल है, यही उनकी विशेषता है। हम चाहे जो मर्जी सोचे लेकिन भगवान केवल हमें हमारा हमसे अपना मन और हृदय चाहते हैं। तो भगवान जगन्नाथ जगन्नाथपुरी में निवास करते हैं, उनकी दो लीलाएं बताकर मैं यहाँ विराम करता हूँ। एक तो एक बार उड़ीसा के जो राजा थे उनका बहुत अच्छी मित्रता जयपुर के राजा जय सिंह के साथ थी। तो एक बार उड़ीसा के राजा ने उनको इनवाइट किया जयपुर के राजा को कि आप आ जाओ उड़ीसा आओ जगन्नाथ जी का दर्शन करो प्रसाद आदि ग्रहण करो। तो राजा जय सिंह अपनी पत्नी चंद्रावती को लेकर निकल जाते हैं जगन्नाथपुरी की यात्रा में, और जब जगन्नाथपुरी पहुंचते हैं तो वहां जाकर जगन्नाथ का दर्शन करते हैं, वहां के भक्तों से जगन्नाथ की महिमा सुनते हैं, जगन्नाथ के प्रसाद की महिमा सुनते हैं कि भगवान जगन्नाथ का थोड़ा सा प्रसाद ग्रहण करने मात्र से व्यक्ति के सारे पाप खत्म हो जाते हैं और अंतिम समय में व्यक्ति कृष्ण के चरण प्राप्त करता है। तो इतनी सारी महिमा और सब कुछ उन्होंने सुना जयपुर के राजा और रानी ने। तो वो जो रानी थी उन्होंने जयपुर आने से पहले जगन्नाथ को एक प्रार्थना की कि हे जगन्नाथ मुझे एक कन्या चाहिए हाँ एक पुत्री के रूप में, और वो कैसी होनी चाहिए लक्ष्मी के समान, लक्ष्मी जिस प्रकार से निरंतर आपकी सेवा करती है उसी प्रकार से मेरी पुत्री होनी चाहिए जो सदैव आपकी सेवा में लगी रहे। तो ये जो रानी और राजा वापस जयपुर आते हैं तो कुछ दिनों के बाद भगवान सदैव सुनते हैं जगन्नाथ प्रार्थना, तो उनको एक पुत्री प्राप्त होती है जिनका नाम रखते हैं विष्णुप्रिया। तो ये विष्णुप्रिया का जब जन्म हुआ तो उसका भी स्वाभाविक झुकाव भगवान की सेवा में था, जगन्नाथ के प्रति उसका आकर्षण भी था। तो ऐसी विष्णुप्रिया जब बड़ी हो गई
और उनकी जो माता है वो बहुत बीमार हो गई, और जब अपने माँ के साथ महल में एक स्थान में जब वो बैठे थे तो उस समय देखा कि महल के बाहर रोड पर कोई व्यक्ति जोर जोर से कुछ गा रहा है। इस राजकुमारी को लगा कि शायद कोई भिखारी है, कोई गीत गा रहा होगा पैसा इकट्ठा करने के लिए, तो अपने दासी को भेजती है। दासी जाकर देखती तो अरे ये कोई भिखारी नहीं है, जगन्नाथपुरी से कोई सन्यासी आया है जो जगन्नाथ के भजन गा रहा है। और वो रुककर दासी को जगन्नाथ का प्रसाद देता है और वो कहता है कि उस रानी को दे दो वो ठीक हो जाएगी। और वो जाकर दासी जब वो प्रसाद देती है तो देखते हैं कि प्रसाद ग्रहण करने मात्र से रानी ठीक हो जाती है। तो ऐसे जब और दिन बीतते हैं और ये जो कन्या है विष्णुप्रिया राजकुमारी उनकी विवाह की आयु होती है, और उस समय वो राजा और रानी इतने अधिक सेवा करते थे उन भक्तों की जो जगन्नाथपुरी से आए हो। कोई भी यदि जगन्नाथपुरी से आता है, जगन्नाथ का डिवोटी है, तो ये दोनों पूरी तरह से उनकी सेवा में लगे रहते थे राजा और रानी। एक बार एक पंडा जगन्नाथ जी का वहां पहुंचा जयपुर में, जयपुर में जैसे पहुंचा ये दोनों राजा रानी उनकी सेवा करने लगे। और उस पंडा ने कहा अभी मेरा जाने का समय हो गया है, मैं जगन्नाथपुरी वापस जाना चाहता हूँ। तो रानी ने बहुत सारे अपने आभूषण धन आदि उस पंडा को दिए भेंट के रूप में, राजा ने कुछ संपदा दी। तो इस राजकुमारी को लगा कि भगवान जगन्नाथ के लिए मुझे भी कुछ देना चाहिए, क्योंकि भगवान जगन्नाथ सदैव सबका कुछ ना कुछ स्वीकार करते हैं। भगवान जगन्नाथ हर एक व्यक्ति की दी हुई जो भेंटे हैं वो सदैव स्वीकार करते हैं, मुझे भी कुछ ना कुछ देना चाहिए भगवान के लिए, खाली हाथ नहीं भेजूंगी इस पंडा को। तो वो सोच रही थी क्या दू क्या दू क्या दू, तो उन्होंने सोचा भगवान के पास तो सारी चीजें हैं, मैं क्या उनको दे सकती हूँ। उन्होंने तुरंत एक सुवर्ण से बना हुआ पेन उठाया और एक ताल पत्र उठाया और कस्तूरी से आप कस्तूरी को खींच के उसकी शाई बनाई और उसके द्वारा एक लेटर लिखा। किसके लिए लिखा? कृष्ण के लिए। प्रेम पत्र लिखा जगन्नाथ के लिए। उन्होंने लिखा और लिखकर ऐसे बंद कर दिया और एक छोटे से सुंदर बॉक्स में डाल दिया और एक गोल्डन कॉइन लिया। वो गोल्डन कॉइन और वो बॉक्स उस पंडा के हाथ में दे दिया। उनको कहा कि आप इसको लेकर चले जाओ जगन्नाथपुरी और ये जो चीज जो मैं दे रही हूँ ये किसी और को मत दो, केवल किसे दे दो? जगन्नाथ जी को दे दो और वहां जाकर ही खोलो। तो राजकुमारी जब जाती है, राजकुमारी जब देती है तो ये सोचते हैं कि राजकुमारी ने क्या दिया होगा क्या दिया होगा। जयपुर से बाहर जैसे आया उसने सोचा उससे रहा नहीं गया, उसने उस बॉक्स को खोला, खोलते देखा कि ये क्या है, छोटा सा कागज है पत्र है। उन्होंने सोचा ये क्या लिखा है, संस्कृत का एक श्लोक लिख दिया है। बहुत गुस्सा आया, उन्होंने कहा इसको लेके जाओ इतना दूर सर के ऊपर उठाकर। वो बॉक्स को भी फेंक दिया और उस ताल पत्र जो लिखा हुआ मैसेज है उसको भी फेंक दिया। वो पंडा पहुंच गया जगन्नाथपुरी में। जगन्नाथपुरी में पहुंचा, पहुंच के सोई रहा था तो उस समय जगन्नाथ जी उनके स्वप्न में आकर कहते हैं बेटा अच्छी नींद आ रही है तुम्हें, हाँ तुम्हें जो जो भेंटे राजा ने दे दी रानी ने दे दी वो तो बड़े आराम से लेके आया थैली भर के, लेकिन मेरे लिए जो भेजा था वो लेके नहीं आया, उसको क्या कर दिया तुमने, फेंक दिया। श्री श्री राम गोविंद की। इस प्रकार से जब राजकुमारी ने जो भेंट दे दी भगवान जगन्नाथ के लिए, क्योंकि जगन्नाथ की विशेषता है कोई भी चीज हमें हम अपने हृदय से उनको अर्पित करते हैं तो भगवान उसको निश्चित रूप से स्वीकार करते हैं। तो जब भगवान जगन्नाथ ने कहा अरे मेरे लिए जो वस्तु दी थी वो तो तुमने फेंक दी, हाँ भगवान ने कहा जैसे तुमने उसे फेंका ना वो पृथ्वी में जमीन पर गिरने से पहले मैंने उसको पकड़ लिया था, उसको गिरने नहीं दिया था, क्योंकि हाँ इतना प्रेम और सेवा की भावना से उस राजकुमारी ने मुझे प्रदान की थी। तो भगवान जगन्नाथ कहते कि सुबह आके देख लेना वो जो भेंट है मैंने कहाँ लगा के रखी आपने, छाती में लगा के रखी, हृदय में रखी है, तो ये सुबह उठ जाता है और उनके मंदिर में पहुंचता है सारे पुजारी। और जब भगवान के पट को खोला जाता है तो देखता है कि भगवान हमेशा एक लॉकेट धारण करते हैं, कृष्ण एक लॉकेट पहनते हैं जिसमें राधा रानी का फोटो होता है, राधा रानी एक लॉकेट पहनती है जिसमें कृष्ण का फोटो होता है। तो जब देखा कि उस लॉकेट के ऊपरी भाग में कुछ चीज चिपकी हुई है, कुछ पत्र है, छोटा सा टुकड़ा कागज जैसा, हाँ ताल पत्र है, तो वो पुजारी जाकर उसको ले लेते हैं अपने हाथ से, हाथ से जैसे लेता है उसको पढ़ने लगता है तो देखता है कि इसके ऊपर एक श्लोक लिखा हुआ था। तो संस्कृत श्लोक में उस राजकुमारी ने लिखा था, रत्नाकर तव ग्रहं ग्रहिणीं च लक्ष्मी किं देयम् अस्ति भवने पुरुषोत्तमाय। तो पहले लाइन वो राजकुमारी उसमें लगती है, रत्नाकर तव ग्रहं ग्रहिणीं च लक्ष्मी, हे भगवान मैंने जब सोचा कि तुम्हें कुछ मैं दे दूं, कुछ अर्पित करूं, कुछ भेंट दे दूं, तो मैंने सोचा कि आपको, मैं तो राजकुमारी हूं, मेरे घर में आभूषण रत्न आदि बहुत कुछ है, लेकिन मुझे याद आया आपको रत्नाकर हो, रत्नाकर समुद्र का नाम है और भगवान उसके ऊपर शयन करते हैं, तो भगवान सारे रत्नों के स्वामी है, उनको किसी रत्न आदि की आवश्यकता नहीं है, तो मैंने सोचा आप रत्नाकर हो, आपको कोई रत्न की आवश्यकता नहीं है, और दूसरा लक्ष्मी आपकी जो पत्नी है वो तो लक्ष्मी है, इस संसार के सारे लोग धन एकत्रित करने के लिए लक्ष्मी के पीछे भागते हैं, लेकिन वो तो आपकी पत्नी है, तो मैं क्या आपको लक्ष्मी अर्पित करूं, धन संपदा आदि, किम देयास्ति भवने पुरुषोत्तमाय, हे पुरुषोत्तम मैंने सोचा इस संसार में आपको कुछ भी नहीं दिया जा सकता, लेकिन अचानक फिर मुझे एक चीज याद आ गई कि आपको एक चीज जरूर दी जा सकती है जो आपके पास नहीं है। कौन सी ऐसी चीज है जो भगवान जगन्नाथ के पास नहीं है? और वास्तव में एक चीज है जो जगन्नाथ जी के पास कदापि नहीं है, जो उनसे चुराई गई है। तो वो लिखती है, आभीर गोप ललना रत मानसाले। तो राजकुमारी लिखती है तीसरी लाइन में, आभीर गोप ललना, जो वृंदावन की जो गोपियां हैं उन्होंने क्या कर दिया है, आपके हृदय आपके मन को चुरा लिया है, आप तो हो द्वारका में लेकिन आपके पास आपका क्या नहीं है, मन नहीं है, मन से रहित हो, इसलिए वो कहती है दत्तम मन तदन में कृपया ग्रहणम। वो कहते हैं कि कृपा करके इसको ग्रहण कीजिए, मुझे पता है आपके पास आपका मन नहीं है, इसलिए मैं आपको क्या दे रही हूँ, मैं अपना मन दे रही हूँ। तो भगवान जगन्नाथ जब ऐसी ऑफरिंग स्वीकार करते हैं, ऐसी भेंट आज तक किसी ने उनको दी नहीं थी, भगवान कहते हैं इस राजकुमारी की जो भेंट है इससे सर्वश्रेष्ठ भेंट इस संसार में कोई और नहीं है, और वही एक डिमांड भगवान जगन्नाथ भगवत गीता में करते हैं, मन मना भव मत भक्तो, कि मेरा आप मुझे मेरा भक्त बनो, लेकिन भक्त कैसे बनोगे, जब आप अपना मन मुझे प्रदान करोगे। तो इस प्रकार से भगवान जगन्नाथ सदैव हमसे किसी चीज की कामना करते हैं तो अपने हमारे मन की कामना करते हैं। तो हमें भगवान के चरणों में किसी चीज को अर्पित करना है तो भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं, मानस देहो जो किछु मोर अर्पिलो तुवा परे नंद किशोर। शुरुआती होती है मन से, हम भगवान को सब कुछ दे देंगे, अपना धन देंगे, प्रणाम भी करेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन मन नहीं देंगे। भगवान आपके नामों का जप भी करेंगे लेकिन जप करते समय आपको मन नहीं देंगे। तो इसलिए भगवान जगन्नाथ हमसे किसी चीज की अपेक्षा नहीं करते, भगवान जगन्नाथ केवल एक ही चीज की अपेक्षा करते हैं, और वो अपेक्षा क्या है, हमसे वो अपना मन मांग रहे हैं। तो इसलिए बहुत आवश्यक है कि यदि वास्तव में भगवान जगन्नाथ को हम अपना बनाना चाहते हैं, भगवान जगन्नाथ की रियल सेवा करना चाहते हैं, हाँ तो यही है, ये गिफ्ट हम भगवान जगन्नाथ को दें
तो वास्तव में हमारा ये जो यात्रा है वो सफल हो सकता है। इसलिए भक्त प्रार्थना करता है, जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी, नयन पथगामी भवत में, कि हे जगन्नाथ स्वामी मेरे नयनों के आंखों के रास्ते से आप क्या हो जाओ, मेरे हृदय में आ जाओ। तभी आएंगे हमारे हृदय में जब हम उनको क्या प्रदान करेंगे, मन प्रदान करेंगे। इसलिए जीवन की सफलता भी यही है, और जगन्नाथ जी की रियल कृपा हम यदि मान इच्छा करते हैं तो उसके लिए हमें प्रयास करना चाहिए कि हमारा ये जो पागल मन है उसको कृष्ण को देने का प्रयास करना चाहिए। और इसीलिए प्रभुपाद ने हमें सारे विधि दिए हैं, और विशेष विधि क्या है, श्रवणा कीर्तना, भगवान के बारे में सुनना और अपने जीवा से भगवान का गुणगान करना। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी के, श्रील प्रभुपाद के, हृदय गौर प्रेमानंदे हरे कृष्णा। ये कथा कंटिन्यू रहेगी कल और परसों के लिए इस वाले ने इस प्रभुदानंद सरस्वती महाराज के द्वारा। हरे कृष्णा।